से क्लास चल रहा था 4 मई 1968 के मध्य में बात कर रही थी। भगवान को कोई ऐसा मुझा हुआ रूप तो नहीं है, ये तो बाप आकर के इनमें पढ़ाते हैं। ऐसा कौन सा रूप है जो मुझा हुआ है भक्ति मार्ग में, लोग उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। तो ब्रह्मा का ही रूप मुझा हुआ है, 4 मुख दिखाई दिए हैं, 5 मुख दिखाई दिए हैं। ब्रह्मा को एक और देवता कहते हैं, दूसरी तरफ दाढ़ी मूंछें दिखाई दी है। और उससे भी ज्यादा शंकर का रूप दिखाई दिया मुझा हुआ। सांप बिच्छू टिंडे लटके हुए दिखाते हैं, हथियार के नाम पर त्रिशूल दिखाते हैं, श्रृंगी दिखाते हैं, कुताड़ी दिखाते हैं, मृगशाला पहने हुए हैं, बागंबर बिछाते हैं मस्तक पर, चंद्रमा धारण किया हुआ है, जूड़े में गंगा जी दिखाई गई है और मालाएं गणित पड़ी हुई हैं, शरीर पर भस्म रमाई हुई है। परंतु इन सब बातों का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में बड़े विचारे मुझे हुए हैं, परंतु बाप कहते मैं तो इनमें आकर के पढ़ाता हूँ, मेरा ये रूप नहीं है। ऐसे नहीं कि पढ़ा करके आप समान भगवान भगवती बनाएंगे। हिंदू बनाएंगे नहीं, मनुष्य से देवता ही बनाते। भगवान तो एक ही होता है, भगवान डबल तो होता नहीं। आप समान आत्मों को बनाते हैं, खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही है, शिव तो ज्योतिबिंदु है, उनका अपना शरीर ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। मैं तो देह अभिमानियों को आत्माभिमानी ज्योतिबिंदु आत्मा बनाता हूं, आत्मा ही पड़ती है उनको, आप समान पवित्र नाली स्कूल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने कृष्ण को दिखाई दिए भगवान के रूप में, अब वो कृष्ण कैसे पढ़ावेंगे? सचिव में कोई पतित थोड़े ही होते हैं जो पावन बनने की पढ़ाई पढ़ानी पड़े। बस तो होता ही है सत्युग में, और वहां देवताएं तो पावन होते हैं। और कभी कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे, ड्रामा में हरेक का पुनर्जन्म का चित्र न्यारा रहता है। ये कुदरत का ड्रामा बना हुआ है, कोई भी आत्मा का एक फीचर कोई भी दूसरे जन्मों से मिल नहीं सकता, इतना समझने का है। क्योंकि ये बनी बनाई बन रही है, बाप भी कहते हैं तुम हो बहू इसी फीचर्स में, इसी कपड़े में, कल्प कल्प तुम यही पढ़ने आवेंगे। और ये हू बहू रिपीट होता है, आत्मा एक शरीर छोड़ फिर वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, वो होती है हद की बात ड्रामे की, बेहद का ड्रामा है, सिवाय बेहद के बाप के इस बेहद के ड्रामा को और कोई समझा ही नहीं सकता। इसमें कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए, समझा नहीं, निश्चय बुद्धि हो जाते फिर कोई न कोई संशय आ जाता है। संशय कब आता है? कोई न कोई का संग का रंग लग जाता है तो संशय आ जाता है। ईश्वरीय संग चलता चला तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि रोज क्लास करो, रोज मुरली सुनो, अगर संग छोड़ा तो विषय सागर में गोता लगाने पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर और दूसरा तरफ है विषय सागर। अगर इस क्षीर सागर को छोड़ा तो विषय सागर में गिर पड़ेंगे। या तो जहर है या तो अमृत, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत मंथन करके निकाला जाता है ना, ये कोई ज्ञान जल नहीं है, ये अमृत है। जल को मंथन करने से अमृत नहीं निकलता, सार नहीं निकलता। और बाप तो ज्ञान सागर है, कहते हैं सागर मंथन किया तो अमृत कलश निकला। उनकी महिमा भी है, जिन्होंने जिन्होंने पिया वो अमर बन गए। असुरों ने पिया वो भी अमर बन गए। तो ये जो महिमा है अमृत की, वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप की महिमा भी लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। कृष्ण भी कोई ज्ञान का सागर थोड़े ही है, बाप ही ज्ञान का पवित्रता का सागर है। बल वो लक्ष्मी नारायण पवित्र बनते हैं, परंतु वो कोई हमेशा के लिए पवित्र थोड़े ही रहते हैं। और मैं तो सदैव के लिए पवित्र हूं, मेरा नाम ही है सदाशिव। वो लक्ष्मी नारायण तो फिर भी आधा तक गिरते तो है ना। सन्यासी तो जन्म बाई जन्म गिरते ही रहते, उनके लिए तो रावण राज्य ही है। राम राज्य में तो आ न सके और जन्म फिर भी भिक्ष से ही लेते हैं, क्योंकि पति तो बनते हैं ना। तो ये सभी बातें कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, ये मैं आकर के बताता हूं। वर्णों की बातें भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आकर के सभी की सदगति करता हूं, और सदगति दाता मैं एक ही हूं, सदगति सभी की करता हूं। तुम सदगति में जाते हो फिर वहां सत्युग में ये बातें नहीं होती। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप और कलयुग में तो भगवान के गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं परंतु चैतन्य में संतोष थोड़ा ही होता है। अभी तो तुम बड़े स्कूल में बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़ करके टीचर बनते हो ना। शिव बाबा है मुख्य प्रिंसिपल, आते भी सब उनके पास है। कहते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं, 4 मई 1968 की वाणी का तीसरा पेज। अरे जिसके तुम पास जाते हो कहते हो वो तो नहीं आता है, उनके पास कैसे जाते हो? तो बताया जाता है तो वो तो आते हैं इनके मुकर्रर रहते में, इसलिए कहा जाता है कि बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा उनका रथ है जिस पर उनकी सवारी है, उनको रथ कहो घोड़ा कहो अश्व भी कहा जाता है। इस पर एक कथा भी है कि दक्ष प्रजापति अर्पिता ने यज्ञ रचा था। अब ऐसे ऐसे शास्त्रों में तो अनेक कहानियां लिख दी। बाप कहते हैं अभी वो सभी बातें भूल जाओ, ये कोई रथ को या घोड़ा को स्वाहा करने की बात नहीं है, ये तो मनरूपी घोड़ा है। इसको यज्ञ में आहुति देनी है, अर्थात मन को अमन बनाना है। शास्त्रों में तो बहुत ही कचड़ा लिखा हुआ, सबसे जास्ती कचड़े की बात लिखी हुई है कि भगवान कण कण में है ठिकर भीतर में, ऐसी बातें तो कब सुननी नहीं चाहिए। बोलो भगवान ने कहा है हियर नो इविल, ये इविल बातें हैं कि कण कण में व्यापक है। तुम भगवान की बैठ ग्लानी करते हो, अपन को 84 लाख योनियों में गिराई दिया है और भगवान को कण कण में मिलाई दिया, अपने से भी उनको तुमने नीचे गिरा दिया। अजामिल जैसे पाप आत्माओं ने भगवान को अपने से भी नीचे गिरा दिया। बोलो हम ये बातें सुन ही नहीं सकते, ऊंचे के ऊंचे शिव बाबा उनकी इतनी ग्लानी, जो सर्व का सदगति दाता है उनको टिक्कर में भीतर में डाल दिया है। इन जैसा महान पापात्मा कोई होता ही नहीं है। शिव भगवान वाद उनको बता दो, भगवान भी कहते हैं मैं आता हूं, तब तब भारत में आता हूं, अति ज्ञानी होती है तब जब। गीता आदि भाई कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, परंतु अर्थ तो नहीं समझते कि धर्म की ग्लानी क्या होती है, वो तो कुछ भी समझते ही नहीं। कितना पत्थर बुद्धि है ये भी समझते हो, तुम्हारा बहुत ही छोटा झाड़ है, छोटे झाड़ को तूफान बहुत लगते, झाड़ बड़ा हो जाता है जड़ गहरी हो जाती है तो तूफान का उतना असर नहीं होता। नाम इसका झाड़ है, फाउंडेशन तो ये है नहीं। इतने सभी अनेक धर्मों के बीच में आप सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग अभी लगाते हैं, इसमें कितनी मेहनत लगती है, और धर्म वालों को इतनी मेहनत नहीं लगती। ये तो ऊपर से आते ही रहते हैं। यहां तो जो सत्य त्रेता में आने वाले हैं उनों की ही आत्माएं बैठ पड़ती है, जो सत्युग त्रेता में आने वाले नहीं होंगे उनों की आत्माएं बैठ भगवान के सामने पड़ेगी भी नहीं। जो पतित हैं उनों को कावड़ बनाने के लिए बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे, तो बच्चों में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने गीता न पढ़ी हो, इस जन्म में तो ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी होगी।
सुनी पर
है,
सुनी पर है,
सुनी या तो पढ़ने की बात हो रही है, वो तो सत्संग में जाके कथा वार्ता में जाके सुनते ही रहते हैं। अरे इस जन्म में नहीं सुनी तो पिछले जन्मों में तो सुनी है, पढ़ी है। गीता का बहुत महिमा है, और गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। सबसे जास्ती गीता बाबा ने पढ़ी है, कौन से बाबा ने है, ब्रह्मा बाबा। ट्रेन में जाता था तो भी गीता पढ़ता था, जैसे अभी आत्माओं को याद करके दृष्टि देते हैं तो पाप कट जाए, भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं, समझते हैं हजारों का उद्धार हो जावे। अब गीता के आगे जल रखकर बैठकर पढ़ने से क्या फायदा, गीता को माता कहते हैं, जरूर कोई गीता माता है जिसके सामने ज्ञान जल रखने से बहुतों का कल्याण हो जाएगा, हजारों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए पुत्रों को बैठ याद करते हैं। अभी तो बाप ने प्रवेश किया तो उस कागज की गीता को ही छोड़ दिए, अरे ये तो झूठी गीता है। बाप तो आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, कहते हैं गीता ज्ञान अमृत है, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। गीता ने तो बहुत मान रखा था, चंदन आय लगाते थे, ये बाबा कोई कम भक्त नहीं था। ऐसे नहीं सिर्फ गीता ही पढ़ते थे, रामायण आदि भी पढ़ते थे, अक्सर करके बड़े लोग आते थे। जो बड़ा था सुनाने वाला, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, उनको कहते थे तुम बैठ पढ़ो, बहुत खुशी होती थी। अभी तो वो सभी भक्ति मार्ग की बातें पास हो गई, बाबा कहते हैं बीती तो बीती, देखो चित्त बोलिए, और साथ साथ की ढेर पड़ी पढ़ाई बातें। अभी बाबा ने कहा ये भूसा बुद्धि से निकाल, ये जो भी तुम्हारे गुरु आदि हैं उन सभी को भगा दो, इन साधुओं आदि का भी उद्धार मुझे करना होता है, तो फिर वो तेरा उद्धार कैसे करेंगे। बाप ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह इनको पक्का हो गया, سمجھا یہ سبھی خلاص ہونا ہے. اب یہ باتیں تھوڑی سمجھی. بابا نے کہا اب یہ سبھی ہوگا, دیری تھوڑی ہی ہے. یہ بھی سمجھتا ہوں ہم فلانا راجا بنوں گا, ایسے ایسے ہوگا, یہ بھی پتا نہیں. کیونکہ تم بچے ہو جانتے ہو کہ بابا کی پرویشتا کیسے ہوئی. یہ باتیں تو منشیہ گرو نہیں جانتے کیسے ہوئی بابا کی پرویشتا. تم بچے جانتے ہو تو کیا جانتے ہو کہ بابا کی پرویشتا کیسے ہوئی. اسی میں پرویشتا کی بات ہوئی. برہما بابا کی, برہما بابا پرویشتا کیسے ہوئی اور کب ہوئی. چھتیس سینتیس میں پرویشتا ہوئی یا ساکھاتکار ہوا تب پرویشتا ہوئی یا بعد میں پرویشتا ہوئی. بعد میں پرویشتا ہوئی. سندھ حیدرآباد میں تو سب بندھن میں آ گئے. بابا تو کراچی اکیلے چلے گئے تھے. بعد میں لمبے سمے کے بعد جب کراچی میں سب بھاگ کر کے آئے تو بابا کا نشہ بڑھ گیا. اسی سمے بابا نے پرویش کر لیا. پہلے تو بابا مرلی نہیں چلاتے تھے. تو یہ باتیں منشیہ نہیں جانتے. منشیہ تو ترمورتی برہما وشنو شنکر کا نام لیتے ہیں. ان کے کام کے بارے میں نہیں جانتے. پرنتو ان برہما وشنو شنکر تینوں مورتیوں میں سے بھگوان کس میں پرویش کرتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے. کس میں پرویش کرتے ہیں. وشنو تو پوتر ہے, اس میں تو پرویشتا کی بات ہی نہیں. اور برہما, برہما پوتر تو ہے پرنتو وہ تو ساکھاتکار کی بات ہے. باپ تو یعنی تو آتما کو پوتر پسند کرتے ہیں یا بھکتاتما کو پسند کرتے ہیں. جانی آتما کو برہما بابا کو تو ساکھاتکار ہوئے بس نشا چڑھ گیا. جانی آتماؤں کو ساکھاتکار سے نشا تھوڑی چڑھے گا. باپ تو بدھیمانوں کی بدھی ہے تو بدھیمان بچوں کو بھی پسند کریں گے نا. وہ بھکتی مارگ میں تو وشنو بھگوان کا نام بہت لیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ وشنو روپ میں بھگوان آیا. اب وشنو تو دیوتا ہے, بھگوان تو نہیں ہے. وہ تو دیوتاؤں سے پالن کرنے والا ہے. وہ کوئی منشیہ تھوڑے ہی ہے جو منشیہ کو پڑھا دیں گے. شنکر کو دکھاتے ہیں وناشکاری, باقی پھر کون پڑھاویں گے. باپ کہتے ہیں میں آ کر کے ان میں پرویش کرتا ہوں. ان میں رام اور کرشن میں پرویش کرتا ہوں. اس لیے دکھایا ہے برہما دوارا استھاپنا ہے کہ استھاپنا برہما دوارا استھاپنا براہمن دھرم کی, برہما دوارا استھاپنا دیوتا دھرم کی. پھر ایک ہی برہما کے دوارا دونوں پرکار کی استھاپنا ہوتی ہے کیا. گائے روس والے برہما کے دوارا براہمن دھرم کی استھاپنا اور और माताओं के द्वारा स्वर्ग की गेट खोलते हैं। तो ब्रह्मा का माता का रूप भी चाहिए, वो पालना और ये विनाश, इसमें बुद्धि से समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वो भगवान कब आया जो राजयोग सिखाया? जरूर तब आया होगा जब मनुष्य बहुत भोगी बन जाते हैं कलयुग अंत में, तब राजयोग सिखाया और राजा ही पति लाया। कब राजा ही पति लाया? जब दुनिया में से सब देशों में राजाई का नाम निशान भी खलास हो जाता है, सारे देशों में प्रजातंत्र राज्य स्थापन हो जाते हैं, तब आकर के राज्यों को सिखाता हूं और राजाई स्थापन करता हूं। ये बातें तुम आप ही समझते हो। तो 84 जन्मों का राज भी समझाया है, उसमें पूज्य और पुजारी का अर्थ भी समझाया है, विश्व में शांति का राज्य ये लक्ष्मी नारायण का था। तो भारतवासी अथवा सारी दुनिया लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहती है, विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाकी सभी आत्मा शांति धाम में थे, सब धर्म शांति धाम में रहते। हम श्रीमद पर अभी यह कार्य कर रहे हैं, 4 मई 1964 का चौथा दिन। अनेक बार हमने ये क्या कार्य किया है और करते रहेंगे, तो आप जानते हैं ये कार्य करने वाले कोई कोर्टों में एक निकलेंगे, गायन भी है कोई में से कोई और कोई में से कोई, ये देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा, सबको तो टच नहीं होगा। भारत की बात है, जो इस कुल के होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा और वो निकल भी गए, आगे भी निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और भी प्रजा आदि बनती रहेगी, जो अच्छा पढ़ते हैं वो पद भी अच्छा पाते हैं, बाबा पूछते भी हैं विजय माला में आना है या प्रजा की माला में आना है, माला तो सभी की बनती है, प्रजा की माला भी है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही आवेगी। ऐसे भी नहीं कि ढेर के ढेर इकट्ठे आ जावे, प्रजा मार्ग में भी साहूकार साधारण गरीब आदि सभी होते हैं ना, राजधानी में तो राजा रानी साहूकार प्रजा साधारण सभी होते हैं। जो पूछते हो क्या बनना चाहते हो तो बताना पड़े, मुख्य है ज्ञान और योग की बात, योग के बिगर ज्ञान कैसे मिलेगा। योग से ज्ञान मिलता है या ज्ञान से योग मिलता है? योग बिगर ज्ञान कैसे मिलेगा? योग लगावेंगे तब ज्ञान मिलेगा या ज्ञान लेंगे तब अयोग लगेगा?
ज्ञान लेने से,
ज्ञान लेने से योग लगेगा। अच्छा बेसिक नॉलेज में ज्ञान मिला है,
आत्मा का ज्ञान,
आत्मा का ज्ञान मिला 84 जन्मों को? न आत्मा का ज्ञान पूरा मिला, न परमात्मा बाप की पहचान बेसिक नॉलेज में मिली, तो क्या मिला? पहली सीढ़ी मिल गई, क्या? मैं आत्मा जो जो बस इतना ही कॉन्सेंट्रेशन जिनका पक्का हुआ, जिनकी आत्मा की सुई टिकट उतर गई, वो आत्मा जैसे स्थायी बिंदु रूप में टिकने लगी, और बिंदु रूप में टिकने से आत्मा सूक्ष्म बनती, सूक्ष्म आत्मा में ज्ञान की गहराई बैठती। इसलिए बोला कि योग बिगर ज्ञान कैसे मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन का मात्रा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एकाग्रता की स्थिति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ज्ञान भी तीखा होता जाएगा। बैठने के साथ योग जरूर चाहिए, ये योग है मुख्य। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, मूल बात ये है। इसलिए बाप कहते याद रखते रहो, बाकी पढ़ाई तो सहज है, पढ़ाई से हेल्दी वेल्दी नहीं बनेंगे, योग से तो हेल्दी बनेंगे, बड़ी आयु मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे, तभी पास विधान होंगे। नहीं तो मोचरा खा करके फिर मान मर्दवा मिल जाएगा। जो मोचरा नहीं खाएंगे तो उनको मान मर्दवा बहुत मिलेगा। क्योंकि आंद्रेबुल हो गया ना, राम ने भी मोचरा खाया। पढ़े आगे अनपढ़े जरूर वही रोते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और तो कोई उपाय नहीं। सोचो सजा, सोचो और कोई उपाय है क्या? ये योगी अग्नि है जिसे तुम्हारे पाप भस्म होते, और अग्नि भी बहुत तीखी चाहिए। साधारण अग्नि में जैसे सोना नहीं मोल्ट होता है, ऐसे ही ये पाप कर्म भस्म नहीं होते। बाकी गंगा सागर स्नान ये तो बहुत बार किया है, सागर में भी बहुत एक्सीडेंट हो जाते, इनोसेंट कोई बीच में आ जाते हैं तो झट लहर ले जाती है, फिर घुटने के खाने लग पड़ते। बाबा का अनुभव, पांव खिसक गया तो हुए खलास। इसमें भी इतने का पैर खिसक जाता है तो गटर में जाकर के गुल्लू मरते। बाबा की शुरू में बहुत कड़ी गुल्ली चलती थी, काम महाशत्रु है इस बात के ऊपर, तो इस पर जीत पानी है। जैसे ये गटर साफ करने वाले माथा मोड़कर जाते हैं अंदर, उनको भी ये चाहिए तो माथा मुड़ाकर गटर में घुस जाओ। बाबा तो साफ कह देते हैं क्या चाहिए। तुमको गटर लाइन की ड्यूटी चाहिए तो माथा मुड़ाकर तुम भी गटर में घुस जाओ। बाबा तो कहते हैं डॉग इन दी मैनेजर, ऐसे क्यों बनते हो? न खुद अमृत पीते हो न दूसरों को पीने देते हो। बाबा तो कुछ भी कह देते, कोई भी नहीं बिगड़ते। बाबा की मुरली पर कोई तो गुस्सा भी लगता नहीं था। ये भी मिसाल देता था रेड़ बटनिया क्या जाने सौरमंडल के साधु को, इसकी बोली में सौरमंडल के साधु का राजहीन हो तो साने क्या संभव। कभी भी कोई बिगड़ते नहीं, और सभी बिगड़े तो इस विकार की बात करते हैं। ये भी ड्रामा की भाभी कह रही, ये भी ड्रामा की भाभी, फिर भी ऐसे ही होगा, अंत में भी किस बात पर बिगड़ेंगे है? यही विकार की बात पर बिगड़ेंगे। ये भी लिखा हुआ है, लाखा भवन को आग लगाई, ये सभी तुमने देखा हुआ है। घास रेड आदि ले आए थे ना, फिर पुलिस आदि को आना पड़ा, बाबा तो समय नहीं था, बाबा तो रात को निकल जाते थे, जैसे तुम भागे इसको भी पता नहीं पड़ा, बाबा भी चला जाता था इसको भी पता नहीं पड़ता। इस सभी ड्रामा में नूर की ड्रामा बड़ा ताकत वाला था, मनुष्य में क्या ताकत, आगे चल कर भी तुम्हें सभी साक्षात्कार होते रहेंगे, घर में नजदीक आते जाएंगे तो स्वयं को देखेंगे, ऐसे थोड़े ही सभी को देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भूलो नहीं, यहां जैसे योग में बैठते हो बाहर जाने से बात ही जारी हो जाती है, सारा दिन गोरख धंधे में लग जाते हैं, यहां आते हो विश्राम पाते हो, रिफ्रेश होते हैं, सात रोज भट्टी में बैठ करके कर जाओ तो दो तीन महीने बाद आओ रिफ्रेश होकर के चले जाओ तो अवस्था अच्छी बनी रहे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का यादगार बन रहे थे, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अपने घर वापस जाना चाहते हो क्या, क्या याद है किधर जाना है, ये भी याद आता है कि उनको शांति धाम जाना है, सुख धाम जाना है, कहाँ जाना है, दुनिया का सभी कुछ भूल जाओ, पुरानी दुनिया से दिल तो नहीं लगती है, बच्चों को नई दुनिया में जाने की इतनी खुशी होती है, अथाह खुशी होती है, ये अपने घर जाएंगे विश्व का मालिक बनेंगे, अर्थ भी समझते हो तो हम नाम जाने का, बच्चे तुम अपना पार्ट देखते हो, ये बातें कौन पूछ रहे हो और सुनने वाला कौन है ये जानते हो। अच्छा बच्चों को शांति धाम और सुख धाम याद आता है तो।
हाँ जी मध्यकाल आदिकाल, मध्यकाल आदिकाल, मध्य है द्वापर और त्रेता का बीच, 2500 वर्ष के बाद है मध्य और उसका आदिकाल त्रेता, मध्य का आदिकाल। हाँ जी
शिव बाबा मुक्त मुक्त है, बाप दादा से पदस्थान
है, एक का फर्क है, शिव बाबा को प्रजापिता एक बच्चा ज्यादा है और प्रजापिता को एक बच्चा कम है,
और बाप दादा से मुकामा तो सभी का बाप है, ईश्वर का है तो ईश्वर का बाप
है।
ये है
क्या है?
ईश्वर का अंत,
ईश्वर का अंत भक्ति मार्ग में कहते हैं। ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता, और यहाँ तो ईश्वर का अंत बता दिया। अभी अभी हम जानते हैं कि ईश्वर बेअंत कहते हैं, लेकिन हमने जान लिया कि ईश्वर बेअंत नहीं है, उसका अंत हमने जाना है। वो प्रजापिता के ऊपर भी है, उससे ऊपर अंत नहीं है। है नाचीज, नाचीज माने कुछ भी नहीं। हाथ उठाना। हाँ आठ प्रजापिता ब्रह्मा का नहीं, शिव बाबा का अव्वल नंबर एक बच्चा शिव प्रजापिता, जिसको कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। प्रजापिता ब्रह्मा का एक बच्चा नहीं
है, एक
हाँ एक बच्चा कम माने शिव बाबा उसका बाप है ना। शिव बाबा को प्रजापिता एक बढ़ गया। जब प्रजापिता का बच्चा कितने है तो शिव बाबा थोड़े ही बच्चे की गिनती में आता है, इसलिए एक कम हो गया। नहीं समझ में आया? शिव बाबा को अगर हम कहें 500 करोड़ बच्चे हैं तो शिव बाबा को तो है 500 करोड़ बच्चे, और प्रजापिता को एक कम 500 करोड़। प्रजापिता अपने को बाप कहेगा तो एक बच्चा कम हो गया ना, इस हिसाब से। है क्या पूछा, समझ में आया?
पूछना नहीं, भाई लोग कहते हैं
धीरे धीरे बोलो तो समझ में आ जाए। पतित पावन माना पतितों को पावन बनाने वाला। पतित माने, पतित माने जिसका तन, जिसका मन, जिसके वाइब्रेशन, जिसकी दृष्टि पतन के गर्त में जाती हो, और पावन माने ऐसा पावन नहीं जो आज पावन है और कल पतित हो जाए, तो उसको एवर पावन कहेंगे। तो ऐसा पावन जो सदैव ही पावन है, उसका नाम है पतित पावन, एवर प्योर।
जैसा सोलर मॉडल में लिमिट है, ऐसा परम धाम का कहां तक लिमिट है?
बाप का घर है अनलिमिटेड, जिसकी लिमिट कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। जैसे वायुमंडल की लिमिट है, ऐसे वायुमंडल से परे है स्पेस, जहां सूरज चांद सितारों की दुनिया है, परंतु एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज चांद सितारों का कोई गम नहीं, कोई की परवाह नहीं। प परे ते परे धाम, उससे परे कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ हो तो फिर उसे परम धाम नहीं कहा जाएगा। जैसे परम पिता से परे ते परे कोई होता ही नहीं, उसकी पराकाष्ठा को कोई पहुंचता ही नहीं। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, प्रजापिता, वो भी परम पिता की पराकाष्ठा को नहीं पहुंचता, वो प्रजापिता को भी घेर के रहता है, उसको भी जब चाहे तब अपने कंट्रोल में कर सकता है, अपनी परिधि में लेकर रहता है।
बाबा, किसी भाई ने पूछा था, जैसे द्वापर में जो हम लोग जिसके देखते हैं, जो आदिम युग का जो मनुष्य है, वो जंगल में पशु और जानवर की मांस खा के रह रहा, जी रहा है।
ये तो तुमने सुना है, सुनी सुनाई बात है।
किसी भाई ने पूछा था।
हाँ,
तो कह रहे हैं जैसा सप्तयुग तेजा में जब देव देवता सुख प्राप्त करते हैं, तो कोई जो द्वापर में स्टार्टिंग से वो लोग सुख कैसे भोग रहे हैं, इस तरह जंगल में भटक रहे हैं, तो कैसे सुख भोग रहे हैं?
हाँ, तो आधा विनाश होता है ना। तो जो सत्युग का सुख है, त्रेता का सुख है, उसका आधा हिस्सा तो विनाश ही हो जाता है। आत्मकिस्मृति की ही गिरावट आ जाती है। आठ कलाएं ही कम आत्मा की हो जाती हैं, तो सुख भी कम हो जाएगा। बाकी जंगली थे ऐसी कोई बात नहीं है, जंगली तो हिंसक होते हैं। जो बनाया ये बात बनाई थी आविष्कारकों ने, वैज्ञानिकों ने, कि मनुष्य पहले जंगली था, पत्थर के हथियार बनाता था। पत्थर के हथियार बनाना माने जंगली बन जाना। पत्थर के हथियार बनाने से पहले हिंसा करने की वृत्ति थी क्या? हिंसा करने की वृत्ति ही नहीं थी तो जंगली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जोर से बोलो। हाँ, है? बाप को पहचानते हैं बड़े से बड़े रूप में, तो बड़े से बड़े आस्तिक। और आज बाप को पहचानते हैं और कल निश्चय होने लगता है तो नास्तिक हो गए। बड़े से बड़े कहाँ रहे? बड़े से बड़ा आस्तिक तो उसे कहें जो एक बार पहचान ले तो कभी भी अटल बुद्धि से चलायमान बुद्धि न बने, उसे कहेंगे बड़े से बड़ा आस्तिक।
लेकिन जिसका विदेश का है भारत का
है,
जिसका भारत का है, भारत को भारत का नास्तिक कहते हैं, हमको नास्तिक है, लेकिन नास्तिक में प्रवेश किया है
तो क्या हुआ?
तो आस्तिक होना चाहिए नास्तिक, तो डॉक्टर नहीं नास्तिक होता।
अकेली पे आम जमाया जाता है क्या? बड़े से बड़ा अगर आस्तिक नहीं बनेगा औरों के मुकाबले, तो प्राप्ति कैसे करेगा बड़े से बड़ी? आस्तिक पने के आधार पर ही तो प्राप्ति होगी। सुप्रीम टीचर एक को नहीं मानेगा, औरों को मानता रहेगा बीच में, तो बड़ी प्राप्ति का अधिकारी बनेगा, बड़ी पढ़ाई पढ़ पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी, जोर से बोलो। दत्तात्रेय इन वाणियों को रोज ध्यान से नहीं सुनते तो वही बातें बार बार पूछते रहते हैं। कितनी बार बताया होगा, दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। तीन है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यज्ञ के आदि में जब मैं आता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तो मैं अकेला आता हूँ या तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ? तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। उन तीन मूर्तियों के द्वारा जिसका जन्म दिया गया है, उन तीन मूर्तियों के द्वारा पहला जन्म, पहला पत्ता कौन? कृष्ण बच्चा माना दादा लेखराज ब्रह्मा। उसने अपने जीवन में गुण उठाए या अवगुण उठाए? हैं? गुण ही उठाए, परंतु वो जो गुण उठाने वाला था उसके साथ साथ एक दोष भी घुस गया। वो तो गुण उठाता था लेकिन उसके आसपास कुत्ते लग गए और विधर्मियों के कुत्ते लग गए, तो चारों ओर क्या दिखाते हैं? दत्तात्रेय के चारों ओर कौन से जानवर दिखाते हैं? कुत्ते दिखाते हैं। जो बोला है सो नहीं होगा है। सुखधाम शांति धाम दुख धाम, ये तीन धाम का फाउंडेशन नहीं पड़ेगा सृष्टि के आदि में है? अरे तीन धाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे तो तीनों का फाउंडेशन भी होना चाहिए। एक स्थान ऐसा होगा जो सुखधाम होगा, कहाँ होगा? यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्थान भी तो दिल्ली कब्रस्तान भी। दूसरा स्थान होगा शांति धाम, परम धाम। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, निसंकल्पी स्टेट। वहां संकल्प चलेंगे ही नहीं, जैसे अभी भी बच्चे अनुभव करते हैं। जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं वो अनुभव करते हैं कि फोन में बात करते हैं और सब कुछ है भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता। बाप के वाइब्रेशन का एक सेकंड के लिए असर पड़ जाता है। तो एक ऐसा स्थान होगा जहां बाप के वाइब्रेशन निसंकल्पी स्टेज के सब बच्चों को आवृत कर लेंगे। स्वधर्मी बच्चे होंगे या वहां विधर्मी बच्चों का जखीरा होगा? सब स्वधर्मी होंगे। है कृष्ण का यमुना पतित नदी है, काली नदी है या गोरी नदी है? है तो विषय वैतरणी नदी होगी, तो विषय वैतरणी नदी को ही अमृत धारा बनाएंगे या जो पावन है उसको अमृत धारा बनाएंगे? महानता किस बात में है? पतित को पावन बनाने में महानता है या पावन को पावन बनाने में महानता है? इसलिए यमुना के कंठे पर राजधानी बनाते हैं ताकि कोई ये न कहे कि भगवान की इसमें क्या बढ़ाई हुई। हमारी हुगली नदी के किनारे क्यों नहीं बनाया?
हाँ
हैं
किसी का हाई पार्क उतरने से सुई के साथ कंपेयर करने का कारण क्या है?
क्योंकि सुई की नोक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती है क्या? और कोई हथियार ऐसा नहीं है जिसकी नोक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सके। आजकल सुइयां कैसी निकली हैं? दो दो रुपए की एक सुई आती है, लगाते हैं तो पता चलता है सुई लगी या नहीं लगी, कितनी महीन होती है। इसलिए आत्मा की उदाहरण की बात जब आती है तो सुई की नोक के बराबर उदाहरण दिया जाता है। और हाँ ब्रह्म विद्या देने वाला कौन है
और ब्रह्म बलि देने वाला कौन है?
ब्रह्म बलि देने वाला कौन है? ब्रह्म कौन है? हा? पहले ब्रह्म को बताओ, ब्रह्म कौन है? शिव बाबा ब्रह्म है, उसकी बलि भी दी जाती है। अरे ब्रह्म शिव बाबा है और उसकी बलि कौन देगा? ये सब भक्ति मार्ग की बातों में क्यों जाते हो जब अर्थ का पता ही नहीं है? अरे ब्रह्म कौन है वो तो बताओ पहले। ब्रह्म किसको समझ रखा है? आत्मा को ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म हो जाएगा। बाबा ने क्या बताया ब्रह्म के बारे में? अरे शिव बाबा ने ब्रह्म को क्या बताया? तब तो जड़ है या चैतन्य है, तो आत्मा को ब्रह्म कैसे कहेंगे? जो आया सो सत्य वचन महाराज। हाँ वो ब्रह्म तत्व। आप एक से पढ़ाई पड़ता है, हैं? हैं? यशोदा मैया है ओकली से बांध दिया, माने गड्ढे से बांध दिया। गड्ढे को बहुत प्यार करता है ना, तो इसी में बंधा रहे। गड्ढा कोई दूसरी चीज नहीं है, पौड़ी जैसा जीवन ही गड्ढा है। जब पेट भर जाए तो स्वतंत्र हो जाना। और यशोदा यश देने वाली माँ है, कृष्ण बच्चा है, इसमें नई बात क्या हो गई? बिल्कुल। जगदम्बा में भी दो रूप हैं, एक आत्मा है जो बोला है मुरली में, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है दुर्योधन दुशासन, इसलिए इस रूप की पूजा नहीं हो सकती जगदम्बा के रूप में। फिर वही आत्मा जब शरीर छोड़ती है, कोई नारी चोले में प्रवेश करती है, तो वो नारी चोला जैसे कि डब्बा है और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है। और
भृगु संहिता बोल के किताब है,
भृगु संहिता हाँ जी,
उसमें कंप्यूटर का वर्णित किया है
हाँ जी,
कौन लिखा तुम आज कौन किस
भृगु ऋषि ने लिखा। और
बाप वो है पुकार बाबा, बाप इमी तो एक बाबा दूसरा ना है, কিন্তু আবার তুই পোস্ট করার সময় তিন বাবার উল্লেখ করা আছে।
হ্যাঁ
তিন বাবা,
তিন বাবা
পোস্ট করার সময় বলা হয়।
হ্যাঁ
যে এক লৌকিক বাপ, অলৌকিক বাপ আর পারলৌকিক বাপ।
হ্যাঁ
তিন বাবার তো কোনো কাজ আছে, ফাউন্ডেশন তো হ্যাঁ,
হ্যাঁ
তিন বাপ তো এক বাপ তো ইয়াদ করলে তো সার তো তিন বাপ তো আ যাবে,
एक बाप को याद करने तीन बाप आ जाते हैं। याद किसको किया जाता है, जिससे कोई प्राप्ति हो उसे याद किया जाता है, या जिससे कोई प्राप्ति न हो उसे याद किया जाता है? याद किसे किया जाता है?
याद प्राप्ति जो होता है पारलौकिक।
अरे याद जिससे प्राप्ति होती है उसी को याद करते हैं, या जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती है उसे भी याद करते हैं? है? किसको याद किया जाता है? जिससे प्राप्ति हो उसे याद किया, अलौकिक बाप से तो कोई प्राप्ति ही नहीं। वो तो जैसे हो गया रावण, बकरे का मुंह भी दिखा देते हैं।
लौकिक बाप से,
लौकिक बाप से तो अल्पकालिक की प्राप्ति होती है,
अल्पकालिक याद रहना पड़ेगा।
हाँ जी और
बाप अलौकिक बाप होने का बात तो पारलौकिक बाप के जानता है।
हाँ जी, लेकिन ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा का चित्र ही गले में लटकाए फिरे तो कोई प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा का चित्र भी रखने की दरकार नहीं है, मना कर दिया। रखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? पतित तो हो जावेंगे, पद ही नीचा हो जाएगा। ऑलराउंडर प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे।
बाबा ये लौकिक काज के लिए सिलीगुड़ी में था एक साथ, उसके पीछे चल रहा है ना, वो कोई वहां से काम करने के लिए क्लास कर रहा है ना, वो बातचीत करने के साथ जब हम एडवांस से ज्ञान चलती थी मना किया, बोलते यहां से नहीं आ सकेगा, शंकर पाटी जाना है, तुम्हारा बहुत असुविधा हो जाता है।
क्या असुविधा हो जाता है?
ये बाप को याद क्लास संगठन में नहीं जा रहेगा तो।
अरे संगठन भक्ति मार्ग के संगठन में जाना है या ज्ञान मार्ग के संगठन में जाना है?
ज्ञान मार्ग बीके ज्ञान,
तो जहाँ आप जाते बीके जिसे कहते हैं वहाँ उन लोगों को बाप का परिचय है, तो सत्संग है या भक्ति का संग है? जहाँ कुसंग है वहाँ जाने से फायदा ही क्या? बाप का परिचय ही नहीं, निराकार बाप से कुछ मिलता है क्या? हमें प्रवृत्ति मार्ग से लेना है या निवृत्ति मार्ग से लेना है? सिर्फ निराकार अगर माँ और बाप दोनों न बने तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ या निवृत्ति मार्ग हुआ? हम सन्यासियों से लेने जाते हैं क्या? वीके वालों में जो पढ़ाने वाले हैं वो सब सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग में हैं? हैं? सन्यासी हैं। वो हमें क्या देंगे? वो खुद ही बाप को नहीं जानते।
है?
मुरली किसे कहा जाता है? मुरली मैं खुद बोला हुआ है। एक मुरली है फर्स्ट क्लास जो सन्मुख सुनाई जाती है, मुख के सामने बैठकर चैतन्य बाप से हम सुनते हैं, वो है फर्स्ट क्लास मुरली। दूसरी है जो हम टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं, सेकंड क्लास मुरली। और थर्ड क्लास मुरली वो है जो कागज के पत्तों में पढ़ी जाती है और सुनाई जाती है। आप कौन सी सुनने जाते हैं? आप थर्ड क्लास सुनने जाते हैं? क्यों? आपको फर्स्ट क्लास नहीं मिलती? आपको सेकंड क्लास नहीं मिलती? उसे तो जेल में डाले डाले फिर। और
भाई बोल रहे हैं कि वहाँ का मुरली जो आपने आप ही पढ़ा है वही पूछ रहा है।
ये मुरली पढ़ने वाला कौन?
वही पूछ रहा है।
तो वही तो बताना है। ये मुरली पढ़ने वाली कृष्ण की सोल है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है या शिव बाबा खुद कागज को लेकर के पढ़ने वाला है? आत्मा की ही पहचान नहीं है। कौन सुप्रीम सोल है? कौन अलौकिक बाप का पार्ट बजाता है? कौन प्रजापिता का पार्ट बजाता है? कौन ब्रह्मा है? कौन विष्णु का पार्ट है? कौन शिव बाप है? पता भी तो होना चाहिए। और
योग और ज्ञान दोनों में अंतर क्या है? योग और ज्ञान दोनों एक ही है क्या? नहीं, इसमें अंतर क्या है?
योग है हठ योगियों का अक्षर और याद है प्रवृत्ति मार्ग वालों का अक्षर। प्रवृत्ति मार्ग में ढेर संबंध होते हैं और सब याद करते हैं। हर संबंध में कोई न कोई संबंध याद आता है। पारिवारिक के संबंधियों में ये कहते हैं कि हमें याद करते हैं संबंधी को या संबंधी के साथ योग लगाते हैं। क्या अनुभव करते हैं? याद का अनुभव करते हैं। तो सहज क्या हुआ? याद हो गई सहज, पारिवारिक चीज हो गई, जन्म जन्मांतर के अनुभव की चीज हो गई। बच्चा पैदा होता है माँ को याद करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है खेलने जाता है मित्र संबंधियों को याद करता है, और बड़ा हो जाता है टीचर को याद करता है, और बड़ा हो जाता है पत्नी को याद करता है, और बड़ा हो गया बाल बच्चों को याद करता है कि जोग लगाता है, है? अरे जन्म जन्मांतर की हमारी रग कौन सी पड़ी हुई है? प्रवृत्ति मार्ग की याद की रग पड़ी हुई है। वो सहज है क्योंकि बार बार हमने वो किया है। साधु संत क्या सिखाते हैं? जोक लगाओ। खुद भी जन्म लेते रहते हैं। और जो काम कई बार का किया हुआ होता है वो सहज हो जाता है। इसलिए सहज है याद और कठिन है योग।
पारदर्शी बाप से सदाकाल का दर्शन होता है,
ठीक है?
दुनिया में जाने के बाद ही क्या दर्शन होता
है? अच्छा, आत्मा को वर्षा लेना है या देह को वर्षा लेना है? देह है ऐसे दुनिया के लिए और आत्मा है, है? अगला जो कल्प होगा वहाँ आत्मा होगी। अगले कल्प में ये देह नहीं होगी। ये पूछ कौन रहा है, देह अभिमानी पूछ रहा है या आत्मा अभिमानी पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? है? अरे देवान में रहने वाला ये पूछ रहा है कि अगले कल्प में ही प्राप्ति होगी, इस जन्म में प्राप्ति नहीं हो सकती। इस जन्म में कोई प्राप्ति नहीं है ईश्वरीय, ईश्वर की पढ़ाई की इस जन्म में कोई प्रारब्ध नहीं मिलती है। कोई समझे बैठा हो कि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, भक्ति मार्ग में चल रहा है। अभी आत्मिक स्थिति में स्थिति ही नहीं हुआ है, अपने को आत्मिक स्वरूप में देखने की प्रैक्टिस ही पक्की नहीं हुई है।